मॉड्यूल 9.1 कुछ वस्तुओं के मूल्य। नितिन क्रीट पारेख कमेटी रिपोर्ट की स्याही अभी सूखी नहीं है, लेकिन तेल सब्सिडी और महंगाई दर पर सरकार की उलझन खुलकर सामने आ गई। अगर सरकार तेल की कीमतें बढ़ाती है तो महंगाई दर के और बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। सरकार पहले से ही इस मोर्चे पर बेहाल नजर आ रही है। जब भारत खुद दुनिया की रिफाइनिंग हब की चौखट पर खड़ा था तो वैश्विक मंदी ने उसके ख्वाबों पर करारी चोट की। साल 2009 में वैश्विक तेल मांग में 2 MMBD की गिरावट दर्ज की गई, जबकि 3.3 MMBD की नई क्षमता ने दुनिया भर में अतिरिक्त क्षमता को 11.7 MMBD पर पहुंचा दिया। रिफाइनिंग मार्जिन साल 2007 में $7.6 प्रति बैरल से 60% लुढ़क कर 2009 में $3 प्रति बैरल पर आ गया। वैश्विक स्तर पर मंदी ने 3 MMBD रिफाइनिंग क्षमता को बंद होने के कगार तक पहुंचा दिया है। आगे की ओर देखें तो अगले 5 साल में 7 MMBD रिफाइनिंग क्षमता जुड़ेगी, जबकि इंक्रीमेंटल मांग 6.4 MMBD से आगे बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी। रिफाइनिंग मार्जिन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में बेहतर रिफाइनरियां ही मैदान में डटी रह पाएंगी। अपनी तेल से जुड़ी मांग का 70% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आयात करने के लिए मजबूर देश 270,000 करोड़ रुपए का सालाना प्राइस टैग तेल की उठापटक करती कीमतों से निपटने के लिए भारत की रणनीति जैसे उदाहरण दुनिया के ज़्यादा हिस्सों में नहीं दिखते। भारत के अलावा केवल बांग्लादेश और श्रीलंका ने ही सब्सिडी का बोझ अपनी सरकारी तेल कंपनियों पर डालकर अस्थिरता का सामना करने का तरीका अपनाया है, और ऐसा साल के अंत में अकाउंटिंग और वित्तीय प्रबंधन के अंश के तौर पर किया जाता है। अंत में जाकर कितना फंड सही रहेगा ये निश्चित नहीं होता। इस वजह से सरकारी तेल कंपनियों को नए इंफ्रास्ट्रक्चर या उपकरणों के आधुनिकीकरण तथा अपग्रेड में आवश्यक निवेश की योजना बनाते वक्त काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक एक्सपर्ट ग्रुप के मुताबिक अगर कच्चे तेल के दाम $80 प्रति बैरल रहते हैं तो भी अकेले डीजल के लिए सब्सिडी बिल 2020 तक 71,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर क्रूड $150 प्रति बैरल का स्तर छू गया तो ये बिल बढ़कर 338,000 करोड़ रुपए का स्तर छू जाएगा। डीजल उपभोग का केवल 12% हिस्सा लेने वाला कृषि क्षेत्र काफ़ी हद तक मूल्य बढ़ाने की वजह से बचा हुआ है। जहां तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सवाल है, उत्पादों की कुल कीमत में ईंधन का खर्च केवल 1.5% है। ऐसे में डीजल के दामों में इजाफा उस पर काफ़ी कम असर डालेगा। निर्यात में सरकारी राहत, जागरण ब्यूरो नई दिल्ली। निर्यात में पिछड़ रहे क्षेत्रों को मदद देने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बचे हुए हिस्से में 500 करोड़ रुपए की और राहत देने का ऐलान किया है। इसके तहत रोज़गार पैदा करने वाले उद्योगों के करीब 2000 उत्पादों को निर्यात में रियायत देने का फैसला किया गया है। विदेश व्यापार नीति में नए देशों में निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली सूची में चीन और जापान को भी जोड़ दिया गया। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने मंगलवार को इस पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि काटन से बने कपड़ों, हैंडीक्राफ्ट और इंजीनियरिंग क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। चालू वित्त वर्ष 2009-10 में इन क्षेत्रों का प्रदर्शन निर्यात के मोर्चे पर अच्छा नहीं रहा है। इन क्षेत्रों के उत्पादों को फोकस प्रोडक्ट स्कीम में शामिल किया गया है। ये स्कीम पिछले साल विदेश व्यापार नीति में घोषित की गई थी। शर्मा ने कहा कि इन प्रोत्साहनों से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उन क्षेत्रों को भी लाभ होगा जहां निर्यात में गिरावट निरंतर जारी है। यह पैकेज 1 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा। पिछले 13 महीने में नकारात्मक दायरे में रहने के बाद निर्यात ने कुछ बड़े देशों में मांग बढ़ने से नवंबर व दिसंबर माह में बढ़त दिखाई है। निर्यातकों के लिए इस प्रोत्साहन का ऐलान ऐसे समय किया गया है जब वित्त मंत्रालय ने नए प्रोत्साहन की संभावना के खिलाफ राय दी है। वित्त मंत्रालय आगामी बजट में राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने पर ध्यान दे रहा है। पैकेज के तहत हैंडलूम समेत 113 उत्पादों को फोकस प्रोडक्ट स्कीम में जोड़ा गया है। इन्हें ड्यूटी में कुल आयातित कीमत के 5% के बराबर रियायत दी जाएगी। इसके अलावा काटन से बने कपड़े और मशीनरी समेत 1837 उत्पादों को मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम में शामिल किया गया है। इन्हें ड्यूटी पर FOB कीमत के 2% के बराबर छूट मिलेगी। इस प्रोत्साहन पर आने वाले खर्च की पूर्ति वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंतरिक बजट से की जाएगी। इसका मकसद निर्यात में शुरू हुई वृद्धि की गति को निरंतरता प्रदान करना है। प्रोत्साहन पैकेज के तहत शुल्क मुक्त आयात का अधिकार वाहन उपकरणों यानी ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स, मशीनरी और रसायन समेत अन्य उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जापान तथा चीन को भी मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम के देशों की सूची में शामिल कर लिया गया है।